हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। राविया को जब लगा कि अनंत उसकी तारीफ नहीं करने वाला है तो उसका मुंह बिगड़ गया। उसने वापस जाते हुए कहा, मुझे लगता है ये ड्रेस ठीक नहीं है, मैं दूसरी ट्राई करके आती हूँ। वो एक बार फिर चेंजिंग रूम में जा चुकी थी। वहीं अनंत ने ये देखकर आंखें छोटी करते हुए अपने मन में सोचा, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? ये ड्रेस तो काफी अच्छी थी, उसके बाद भी क्यों रिजेक्ट कर रही है, और ऊपर से इतना टाइम भी नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद ही राविया वापस आई थी। उसने इस बार सिंदूरी रंग का लहंगा चोली पहना था, जिसका दुपट्टा बहुत ज्यादा हैवी और वाइन कलर का था। वो ड्रेस काफी रॉयल वाइब दे रही थी। राविया दोनों हाथों से अपना लहंगा संभालते हुए एक बार फिर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। विहा ने जल्दी से सोफे से उठते हुए कहा, अरे दी, मुझे लगता है आप पर तो सारी ड्रेस ही अच्छी लगती है। ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है और वो वाली भी बहुत प्रिटी लग रही थी। आप एक काम करो, ये दोनों ले लो। राविया ने जल्दी से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसने चोर नजरों से अनंत की तरफ देखा, जिसने इस बार भी उसकी ड्रेस की तारीफ नहीं की थी। राविया का मन उदास हो चुका था। मन मारकर उसने विहा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई है तो हम यही ले लेते हैं। अब तुम भी ट्राई करके आओ, इतनी देर में अनाही दी के लिए ड्रेस देखती हूँ। ये सुनकर विहा मुस्कुराते हुए उसे सेल्स गर्ल के साथ अंदर चली गई और राविया चेंजिंग रूम में जाकर अपनी पुरानी वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। उसने वो सिंदूरी रंग की ड्रेस फाइनल कर ली थी, इसलिए उसे पैक करवाकर उसने काउंटर पर रखवा लिया और उसके बाद अनाही के लिए लहंगे देखने लगी। वहीं अनंत अब बार बार उसी को देख रहा था। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। हाँ, वो अपनी पत्नी को इस तरीके से उदास देखकर परेशान था, जो उसे नहीं होना चाहिए था। वो मन ही मन खुद से जंग लड़ रहा था। अचानक वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई क्या हुआ, तेरे चेहरे पर क्यों 12 बज गए हैं? अभी तक तो घड़ी में भी 12 नहीं बजे, क्यों चिंता कर रहा है? मुझे पता है तुम्हें अनाही से बहुत डर लगने लगा है, पर वो इतनी खड़ूस नहीं है। अगर थोड़ी देर हो जाएगी तो मैं समझा लूंगा उसे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर अनंत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए ही हामिद से हिलाया। वहीं दूसरी तरफ निमानी हाउस में माधवी गार्डन एरिया के एंट्रेंस पर खड़ी थी और खुन्नस भरी नजरों से सामने देख रही थी, जहां रूहान जबरदस्ती अनाही को नींबू पानी पिला रहा था। अनाही उसे बार बार मना कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। माधवी ने अपने मन ही मन कहा, ये मैना तोता की जोड़ी तो बहुत जल्दी चांद पर पहुंच रही है। पता नहीं मेरी बहू ऐसी क्यों नहीं आई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अनंत की पसंद अच्छी नहीं है, पर अनाही को तो रूहान ने नहीं पसंद किया था, निवेदिता ने किया था। इस निवेदिता की पसंद इस घर में सबसे अच्छी है। इसका पति भी सबसे अच्छा था, इसके बेटे भी सबसे अच्छे हैं, और अब तो इसकी बहू भी। पर मैं इसकी किस्मत को बहुत जल्दी पलट कर रहूंगी, मेरे होते हुए ये सब नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, जीजी, क्या एक बार फिर आप ख्वाब देखने लग गई हो इस हस्ती खेलती फैमिली को उजाड़ने का? हर बार आप बस ये फिल्मी डायलॉग मारती रह जाती हो और आपका हर प्लान फेल हो जाता है। कुछ अच्छा बनाओ ना, जो आज तक की विलेन हिस्ट्री में किसी ने ना बनाया हो। माधवी ने गुस्से में राधिका की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाते हुए अंदर जाने लगी। राधिका भी उसके पीछे पीछे गई। माधवी ने घर के अंदर जाते ही गुस्से में कहा, तुम मुझे क्यों हर बात पर ताने मारती रहती हो? मैं तुमसे ज्यादा ही जानती हूँ। अभी तक हमारा सबसे बड़ा राज किसी को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, तो तुम मुझे कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल मत करो। राधिका ने जल्दी से कहा, अरे आप तो मुझ पर ही गुस्सा उतारने लग गईं, मैं तो अनाही के बारे में बता रही हूँ। उस पर आपकी कोई तरकीब काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न लड़कियों पर मॉडर्न तकनीक यूज करो। माधवी ने गुस्से में कहा, तुम्हें किस एंगल से वो मॉडर्न लगती है? वो मॉडर्न बहू वाला एक भी काम नहीं करती है। मॉडर्न तो मेरी बहू है, न पहनने का ढंग है, न बोलने का, न खाना बनाना आता है, न कुछ और। राधिका ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, पहले तो आप उसके बारे में सोचना बंद कीजिए और अनाही के बारे में सोचिए, आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही है। राधिका सोफे पर जाकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, आज रात की गरबा नाइट का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है, हम उसी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर माधवी के परेशान चेहरे पर अचानक ही चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में रूहान ने जल्दी से इन्विटेशन कार्ड को पैक करते हुए बेंच पर रखा और फिर उठकर अनाही के पास आया। उसने अनाही की साड़ी का लटकता पल्लू उठाकर उसकी पीठ पर कर दिया क्योंकि वहां धूप बहुत ज्यादा थी। अनाही ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। रूहान को अपने इतने करीब देखकर वो जल्दी से दो कदम पीछे हटते हुए बोली, रूहान जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपका काम हो गया है? रूहान ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम जी मेरा सारा काम हो गया है और ये डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब प्लीज आप अंदर चलिए, मैं चाहता हूँ आप गरबा नाइट में सबसे खूबसूरत लगो और आप हो कि धूप में खड़ी हो, आपको टैनिंग हो जाएगी। अनाही ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, आप बस यही सोच रहे हैं, मुझे लगा था आपको डांस के बारे में सोचना है। रूहान ने जल्दी से कहा, ऑफ कोर्स मुझे डांस के बारे में भी सोचना है, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, हम डांस प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस भी नहीं तो कम से कम हम सारी मूव्स तो सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें करनी है, ताकि जब वो चारों आए तो हम उनको सीधा दिखा दें कि उनको ऐसे ऐसे डांस करना है। वो सब कुछ सिलेक्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अनाही ने कुछ सोचते हुए कहा, ये सब तो सही है, और फिर वो आंखें छोटी करते हुए बोली, पर मुझे पता है आप ये सब बहाना बना रहे हो मुझे यहाँ से कमरे में ले जाने के लिए, पर अब ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है तो मैं चल लेती हूँ अंदर। इतना बोलकर अनाही अंदर आने लगी और रूहान भी मुस्कुराते हुए जल्दी से उन इन्विटेशन कार्ड को लेकर दौड़ते हुए गार्डन से बाहर आया। उसने पार्किंग एरिया में खड़े ड्राइवर को वो सारे इन्विटेशन कार्ड थमाते हुए कहा, इन्हें जल्द से जल्द इस मोहल्ले में पहुंचा देना और पहुंचते ही मुझे इन्फॉर्म भी कर देना, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बस एक मैसेज करना, मैं इसका सलूशन तुम्हें जल्दी दे दूंगा, पर ये काम हो जाना चाहिए। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रूहान जल्दी से घर के अंदर आया। तब तक अनाही निवेदिता के कमरे में जा चुकी थी। ये देखकर रूहान का मुंह छोटा सा हो गया, क्योंकि वो निवेदिता के कमरे में नहीं जाना चाहता था। वो थके कदमों से अपने कमरे में आया और कमरे में ही इधर उधर टहलते हुए अनाही का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भी जब अनाही कमरे के अंदर नहीं आई तो रूहान के सब्र का बांध टूट गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ निवेदिता के कमरे के सामने गया। उसके धड़कनें बेतहाशा बढ़ी हुई थीं। बहुत दिनों बाद वो अपनी माँ के कमरे के सामने खड़ा था। बचपन में एक बार जब निवेदिता ने उसका साथ छोड़ दिया था तो रूहान ने कभी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा था, जो शायद उसके बाद उसे बाहों में उठाने के लिए तरसती रही थी। रूहान ने भगवान को याद करते हुए आखिरकार हिम्मत जुटाकर निवेदिता के कमरे को नॉक किया।
अंदर से निवेदिता की आवाज़ आई, हाँ कौन है दरवाजे पर? रूहान ने कुछ नहीं कहा और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार निवेदिता की आंखें छोटी हो गईं। उसने मुड़ते हुए अनाही की तरफ देखा तो अनाही ने जल्दी से कहा, शायद रूहान जी होंगे, हमें डांस प्रैक्टिस करनी थी और मैं यहाँ आ गई क्योंकि आपने उपवास करने के बाद से जूस नहीं पिया है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए बस मैं यहाँ आ गई थी। ये सुनकर निवेदिता की आंखें फैल चुकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे के सामने रूहान खड़ा है। वो जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ इससे पहले कि वो वापस चला जाए। ये सुनकर अनाही को ध्यान आया कि रूहान और निवेदिता तो आपस में बोलते ही नहीं हैं। वो कितने आराम से निवेदिता को बता रही थी कि दरवाजे पर रूहान खड़ा है। वो भी जल्दी से निवेदिता के साथ ही बेड से उठ गई।